आप सुन रहे हैं नवभारत कोड।
नमस्कार, मैं हूं नदीम। विशुद्ध राजनीति में मैं आज बात करूंगा यूपी की पॉलिटिक्स में असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर की। कितना कारगर होगा ये फैक्टर, किसको नफा होगा और कौन रहेगा नुकसान में। हैदराबाद से निकलकर अपनी पार्टी आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको कि मीडिया में शॉर्ट फॉर्म में AIMIM कहा जाता है, को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के लिए ओवैसी का सियासी सफर वाया महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु होता हुआ अब यूपी पहुंचा है। यूपी में ओवैसी फैक्टर की पहली बुझाने को हर कोई बेताब इसलिए है कि 403 विधानसभा सीटों वाला ये प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य तो है ही, यहाँ पर 18% मुस्लिम आबादी है। यहाँ की लगभग 125 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स बहुत ही निर्णायक माने जाते हैं और राज्य की जो दो प्रमुख पार्टियाँ हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उनका मुस्तकबिल भी इन्हीं मुस्लिम वोटर्स के जरिए तय होता है। 2012 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज़्यादा 64 मुस्लिम विधायक जीते थे, लेकिन 2017 के चुनाव में इनकी संख्या घटकर 23 ही रह गई थी। यूपी की पॉलिटिक्स में जो खलबली मची है वो इस तर्क के आधार पर मची है कि ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटर्स में विभाजन होगा और उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और इसी वजह से वो बीजेपी को बहुत सूट कर रहे हैं। ये संयोग भी हो सकता है कि जुलाई महीने में जब ओवैसी का ये बयान आया कि वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो योगी आदित्यनाथ ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में योगी ने कहा कि ओवैसी बड़े नेता हैं, वो देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का समर्थन प्राप्त है, बीजेपी अपने मुद्दों मूल्यों के साथ चुनाव के मैदान में रहेगी, हम उनके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। और जैसे ही योगी ने ओवैसी की चुनौती को स्वीकार किया, विपक्ष की तरफ से कहा गया कि बीजेपी और ओवैसी के बीच मैच फिक्स है और ओवैसी की चुनौती ये भ्रम पैदा करने के लिए स्वीकार की गई है कि वह की मुख्य लड़ाई में ओवैसी ही हैं। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी जो कि सांसद भी हैं, संजय सिंह ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री एक ऐसी पार्टी की चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं जिसका राज्य में एक भी विधायक नहीं है और ये संकेत है कि दोनों के बीच मिलीभगत है, ऐसा संजय सिंह ने कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वैसे यूपी पहला राज्य नहीं है जहां ओवैसी के आने पर उनकी बीजेपी से मिलीभगत की बात ना की जाती हो। ओवैसी जिस राज्य में भी चुनाव लड़े हैं वहां भी उन्हें बीजेपी की बी टीम ही कहा गया है। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि दूसरे राज्यों में जहां ओवैसी अब तक चुनाव लड़ चुके हैं वहां वो कितना प्रभावी साबित हुए हैं, लेकिन उससे पहले ओवैसी की जिंदगी से जुड़ी एक दिलचस्प बात भी आपको बताना चाहूंगा। कॉलेज के ज़माने में क्रिकेट उनका जुनून हुआ करता था, वो अपना कैरियर एक क्रिकेटर के रूप में देखना चाहते थे, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल तक वो खेले हैं और फास्ट बॉलिंग किया करते थे, लेकिन चूंकि उनकी पैदाइश एक राजनीतिक परिवार में हुई थी ऐसे में उन्हें राजनीति में आना ही था और उन्हें अपना ट्रैक बदलने के लिए मजबूर होना। पिछले तेलंगाना चुनाव के मौके पर मुझे उनके साथ उनके शहर हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान कई घंटे साथ गुजारने का मौका मिला था। इसी दौरान मैंने उनसे पूछा था कि फास्ट बॉलर के रूप में आपका क्या स्ट्राइक रेट रहा करता था, तो उनके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी और जवाब था कि विकेट लेने से भी कहीं ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि आप बॉल फेंकने के लिए दौड़ना भी नहीं शुरू किए हों और क्रीज में खड़ा बल्लेबाज आपसे घबराने लग जाए। शायद क्रिकेट के ज़माने की इस विशेषज्ञता का इस्तेमाल वो इन दिनों पॉलिटिक्स में करने लगे हैं। देखिए ओवैसी के विचारों से सहमत होना ना होना ये हर किसी की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन ओवैसी को उनकी जिस खासियत ने राष्ट्रीय पहचान दिलाई है वो है उनकी हाजिर जवाबी और उनके तर्क। पिछले दिनों मीडिया की एक जमात में उनसे सवाल हुआ कि आप यूपी क्यों लड़ रहे हैं, इसके जरिए तो वोटों का बंटवारा होगा और आप बीजेपी का काम आसान कर देंगे। उनका जवाब था कि अगर आप लोग तर्क के आधार पर हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो आपको ये बताना होगा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी जिन 301 सीटों पर चुनाव जीती उनमें से एक भी सीट पर हमारा उम्मीदवार नहीं था, फिर बीजेपी वहां चुनाव कैसे जीत गई। और अगर आप लोग इमोशनली ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप लोग अभी के अभी अखिलेश यादव या मायावती को फोन लगाइए और उनसे कहिए कि ओवैसी गठबंधन करने को तैयार हैं, क्या वो लोग भी गठबंधन करने को तैयार हैं। हम यूपी की पॉलिटिक्स पे आए उससे पहले आपको ओवैसी का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझना होगा। MIM उनकी जो पार्टी है वो तवारीखी पार्टी है, थोड़ा ऐतिहासिक उसके साथ पक्ष जुड़ा हुआ है, हैदराबाद की बहुत पुरानी पार्टी है, हालांकि उस पर विस्तार से कभी अलग से बात होगी, लेकिन एक तरह से ये उनके घर की पार्टी है। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी सन 2004 तक 6 बार हैदराबाद के सांसद हुए और 2004 से असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हो रहे हैं। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि हैदराबाद में तो ओवैसी परिवार का ज़बरदस्त दबदबा है, लेकिन हैदराबाद से बाहर दूसरे शहरों में और ज़िलों में MIM आज तक ताकत नहीं बन पाई, तब भी नहीं जब आंध्र प्रदेश संयुक्त था, बंटवारा नहीं हुआ था, और उसके बाद भी नहीं जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हो गए। ओवैसी की जो कामयाबी है वो सिर्फ लोकसभा के चुनावों में हैदराबाद की सीट तक सीमित रहती है और विधानसभा के चुनावों में वो हैदराबाद के अंदर जो 7-8 सीटें आती हैं उस तक ही सीमित रहते हैं। ये भी नहीं है कि बाकी ज़िले और शहरों में मुस्लिम आबादी ना हो। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में जब पिछले चुनाव हो रहे थे तो हम उस मौके पर इन दोनों राज्यों में थे और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि राज्य के दूसरे हिस्सों में ओवैसी ताकत क्यों नहीं बन पाए, तो पता चला कि हैदराबाद का जो मिजाज है, वहाँ की जो भाषा है, खान पान है, सामाजिक ताना बाना है, वो राज्य के दूसरे ज़िलों के मुसलमानों से कतई जुदा है और इस वजह से वो दूसरे ज़िलों में हैदराबाद से जो हटकर जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ वो मुसलमानों के नेता नहीं बन पाए। अपने राज्य से बाहर निकलकर दूसरे राज्य में पार्टी विस्तार की ओवैसी की जो इच्छा है वो भी आपको जान लेना जरूरी है कि वो इच्छा उनके अंदर क्यों और कैसे जगी। निजाम कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद ओवैसी को उनके पिता ने बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया और फिर वहाँ से लौटने के बाद 1994 में उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री कराई। ओवैसी पहली बार 1994 में विधायक हुए और 2004 में पिता ने अपनी हैदराबाद वाली सीट असदुद्दीन ओवैसी के लिए छोड़ दी और फिर जब उनके पिता नहीं रहे, असदुद्दीन ओवैसी ने खुद पार्टी की कमान संभाली, तो उनकी इच्छा पहले तो अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने की हुई और साथ ही पार्टी को भी राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दिलाने की हुई। अब जब राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दिलाने की उनकी इच्छा हुई तो वो सिर्फ हैदराबाद की एक सीट जीतकर नहीं दिलाई जा सकती है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने के नियम है कि किस दल को कब राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिलेगी। अब जैसे कि जो मौजूदा नियम है वो उसके तहत जब कोई पार्टी कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में 11 लोकसभा सीट जीतती हो या 4 लोकसभा सीटें उसने जीती हो और 4 राज्यों में उसे कम से कम 6% वोट मिला हो या कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। तो फिर ओवैसी का जो सफ़र था वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए हैदराबाद से दूसरे राज्यों की ओर शुरू हुआ। ओवैसी का पहला पड़ाव महाराष्ट्र था। हम पुराने चुनावों पर नहीं जाते हैं, हम 2019 के चुनावों पर की बात करते हैं, जो महाराष्ट्र के जो 2019 के चुनाव हुए थे उसकी। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में उन्होंने 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 2 सीट पर ही उन्हें जीत मिल पाई और 35 सीट पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव से ही शोर मचाना शुरू किया कि हमारी हार ओवैसी की वजह से हुई है, लेकिन पार्टी तब भी ओवैसी के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी कि हम तो सिर्फ 44 सीटों पर चुनाव लड़े थे, अगर कांग्रेस 44 सीटों पर हमारी वजह से चुनाव हार गई तो बाकी की 244 सीटों को वो क्यों नहीं जीत पाई। बाद में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने नवभारत टाइम्स के दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि ओवैसी की वजह से माहौल खराब होता है और उसका असर पूरे नतीजों पर पड़ता है, लेकिन उनका ये तर्क उनके गृह राज्य बिहार में 2020 के चुनाव में ही बेमानी साबित हो गया। ओवैसी ने वहाँ की 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, इन 20 सीटों पर सबसे ज़्यादा 9 सीटें महागठबंधन को ही मिल गईं। ओवैसी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली और 14 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और 6 सीटें एनडीए के हिस्से में गईं। जो सीटें एनडीए को मिली उन पर उनकी जीत का अंतर इतना ज़्यादा था कि अगर ओवैसी के उम्मीदवारों को मिले वोट भी महागठबंधन के उम्मीदवारों के हिस्से में मिला दिए जाए तो भी वो जीत नहीं सकते थे। और अगर ओवैसी का इफेक्ट बाकी सीटों पर होता तो ये भी बात गौर करने लायक है कि आरजेडी की जीत का स्ट्राइक रेट भी प्रभावित होता, लेकिन आरजेडी की जीत का जो स्ट्राइक रेट था वो 52% था और जबकि कांग्रेस का सिर्फ 27%। आरजेडी के कई सीनियर नेताओं ने चुनाव बाद कहा भी था कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा सीट देना ही सबसे बड़ी चूक साबित हुई। और फिर बिहार से सबक लेते हुए डीएमके ने तो तमिलनाडु में कांग्रेस की सीटों में कटौती कर लिया था। 2016 के चुनाव में कांग्रेस को तमिलनाडु में डीएमके ने 41 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी थी, लेकिन 2021 के चुनावों में उसे सिर्फ 25 सीट दी थी। बंगाल का चुनाव पर आप नज़र डालिए, वहाँ भी ओवैसी की पार्टी ने चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन ओवैसी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि तीनों राज्यों के चुनाव के वक्त ओवैसी फैक्टर की कुछ वैसी ही चर्चा थी जैसे कि आज की तारीख में यूपी में हो रही है। तमिलनाडु में भी जब उन्होंने गठबंधन के जरिए अपने उम्मीदवार उतारे थे तो यह कहा गया था कि इसकी वजह से डीएमके को नुकसान होगा क्योंकि डीएमके को मुस्लिम वोट जाता है और ओवैसी उसका बंटवारा कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद वहां डीएमके ने जीत दर्ज की। और अब हम आते हैं यूपी पर। एक बात जो आप लोग शायद याद नहीं कर पा रहे हैं वो ये है कि ओवैसी यूपी में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। 2017 में भी वो यहाँ की 38 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने अपना जो चुनावी आगाज़ है वो योगी के गढ़ कहे जाने वाले पूर्वांचल से किया था और उस समय बहुत विवाद भी हुआ था, जो हिंदू युवा वाणी थी उसने उनके रोड शो को रोके जाने की धमकी दी थी, लेकिन इन सबके बावजूद उनके 37 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार ओवैसी ने राज्य की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की है, ओम प्रकाश राजभर के साथ उनके गठबंधन की बात चल रही है। सवाल यह है कि यूपी में ओवैसी कितना प्रभावी होंगे और इसका जवाब पाने के लिए बंगाल के चुनावी नतीजों से सबक लिया जा सकता है। देखिए, जब चुनाव में बीजेपी के मुकाबले बहुत सीधा और नजदीकी मुकाबला देखने लगता है तो जो गैर बीजेपी वोटर होता है, खास तौर पर मुस्लिम वोटर, वो उस पार्टी के साथ गोलबंद हो जाता है जिसके सरकार बनाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। बंगाल में ओवैसी से लेकर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का फैक्टर इसलिए बेअसर हो गया कि वहाँ के मुस्लिम वोटर को ये लगने लगा था कि ओवैसी या फुरफुरा शरीफ के पीरजादा को अगर वोट दे भी दिया गया तो ये लोग सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे, सरकार या तो बीजेपी की बनेगी या फिर दीदी की बनेगी, तो फिर उन्होंने अपना पाला चुन लिया। दूसरी बात यह है कि चुनावों में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की बहुत अहम भूमिका होती है। दूसरे राज्यों में ओवैसी का जो पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है वो कहीं होता ही नहीं है। महाराष्ट्र में 2 और बिहार में उनके जो 5 विधायक जीते हैं वो राजनीति में स्थापित चेहरे हैं, उनमें से कई पहले से ही अलग अलग पार्टियों से विधायक रह चुके हैं। जीतने वालों के अलावा ज़्यादातर सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों की जमानत इसलिए जब्त हो जाती है कि संगठन स्तर से जो वोट निकलता है वो निकल ही नहीं पाता है। ओवैसी के पक्ष में कोई ऐसी हवा तो होती नहीं है कि लोग अपने घर से निकल पड़े कि हमको ओवैसी को ही वोट देना है। ओवैसी का एक अपना एक परंपरागत तरीका है कि जब वो किसी राज्य में अपनी ज़मीन तलाशने के लिए जाते हैं तो उस राज्य में जो प्रभावी नेता होते हैं जिन्हें किसी वजह से उनकी पार्टियों से या किसी दूसरी पार्टी से टिकट नहीं मिल पा रहा होता है वो उसे अपने पाले में कर लेते हैं। अब जैसे यूपी में जब उन्होंने दस्तक दी है तो उन्होंने जेल में बंद डॉन अतीक अहमद के परिवार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अतीक अहमद के चुनाव लड़ने की बात हो रही है और अतीक अहमद कई बार के सांसद और विधायक रह चुके हैं और जेल में रहकर भी चुनाव जीतते रहे हैं। इसी तरह उन्होंने डॉन मुख्तार अंसारी को भी टिकट देने का ऑफर किया है और आधा दर्जन से ज्यादा अन्य नेताओं से भी उनके संपर्क में होने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल के नतीजे ये बताते हैं कि ओवैसी को बीजेपी की बी टीम भले ही कहा जाता हो लेकिन वो ना तो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहे हैं और ना ही उनकी पार्टी दूसरे राज्यों में कोई बड़ा चमत्कार अब तक कर पाई है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां ज़रूर बटोर लेते हैं। विशुद्ध राजनीति में आज इतना ही। नमस्कार।
इस तरह के और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ हिंदी इंफरटेनमेंट सर्विस नव भारत गोल्ड पर लॉगिन कीजिए। गोल्ड के पॉडकास्ट का खजाना मिलेगा नव भारत गोल्ड.com पर।